हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचमो अध्याय श्लोक संख्या 39। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबरधारुर्बिम्बफलाधरोष्टा, पुरेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणे नरुत्रमरुतः स्तुवन्ति देवस्तवे, वेदिसाङ्गपद्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतिर्मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाय धीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा। श्रीयद्वैतकथाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय जिसका शीर्षक है नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। श्लोक संख्या 39। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, इमं सनिगमं ब्रह्मन् अवेत्या मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव। शब्दकार्थ इमं अर्थात इस प्रकार, स्वनिगमम यानी भगवान विषयक वेदों का गुह्य ज्ञान ब्रह्मन् हे ब्रह्मण अर्थात व्यासदेव, अवेत्य जानकर मत मेरे द्वारा अनुष्ठितम संपन्न अदान्य ज्ञानम ऐश्वर्यम अदात मतलब वर दिया ने मुझे ज्ञानम अर्थात दिव्य ज्ञान ऐश्वर्यम अर्थात ऐश्वर्य स्वस्मिन अर्थात निजी भावम प्रगाढ़ प्यार तथा स्नेह च तथा केशव भगवान श्री कृष्ण ने। अनुवाद, हे ब्रह्मण इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम भक्ति का वर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है, इसलिए दिव्य संसार में भगवान का अस्तित्व सम्मिलित है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के दर्शन की उपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि दिखाता है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया और मनुष्य को ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि यानी शब्दों के उच्चारण में कोई प्रतिबिंब नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो परंपरा पद्धति से चला आ रहा हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 39 अत्यंत ही सुंदर, समझो इसमें भक्त अपनी साधना से जो जो प्राप्त कर सकता है उसके विषय में नारद मुनि बता रहे हैं। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें भगवान के शब्द ध्वनि, जैसे हमने कल पढ़ा कि श्लोक नंबर 38 में इति मूर्त्य भिधानेन मंत्रमूर्तिम अमूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषम् सम्यक् दर्शन पुमान इति मूर्त्य भिधानेन। अब वो भगवान जिसको मैंने शब्द द्वारा मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम भगवान के दिव्य ध्वनि का उच्चारण करके, तो ये बताया कल नारद मुनि ने कि इस प्रकार वही वास्तविक दृष्टा है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है जिनका कोई भौतिक रूप नहीं। वास्तविक भक्त क्या है? वास्तविक जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भगवान की पूजा किससे करते हैं? भगवान के पवित्र नाम के द्वारा। कलो युगधरम हरिनाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के द्वारा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है शास्त्र में नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो, के नाम जो भगवान का नाम होता है वो कोई साधारण नहीं है, वो चिंतामणि है, दिव्य चिंतामणि की भांति है, वो पूर्ण शुद्ध है, इसलिए जो उसको उच्चारण करता है वो भी शुद्ध हो जाता है। नित्य मुक्त हो, वो नित्य है, इटर्नल है, ऐसा नहीं है कि नाम कभी कहीं से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह से भगवान इटर्नल है उस तरह से भगवान का नाम भी इटर्नल है, शाश्वत है, सनातन है। और मुक्त, जैसे भगवान का नाम टोटल पूर्णतया मुक्त है और जो उनका जप करता है उस पवित्र नाम का वो भी मुक्त हो जाता है। नित्य मुक्त अभिनत्वान नाम नामिनो, अभिनत्वान मतलब अलग नहीं है, भगवान और नाम एक ही है। जितना इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, भगवान की अंदर जितनी शक्ति है जितना पावर है वो भगवान ने अपने नाम के अंदर डाल दिया है। तो जब नारद मुनि ने भगवान के उस पवित्र नाम का जप किया तो जप करने से क्या लाभ हुआ वो आज बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यह लाभ बताया है श्रीमद् भगवद गीता में 10.10। भगवान बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते, यानी कि जब मैंने साधुओं का संग किया, वास्तव में भक्तों साधु संग का प्रथम लाभ क्या होता है जानते हैं आप? पहला लाभ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि साधुओं के साथ आप बैठे गप्पे लड़ाई और फिर वो चले गए, आप बोलो कि हाँ। कोई कोई लोग ऐसा करते हैं, उनके घर पे कोई भक्त भी आएगा, फिर वो मजाक मस्ती करेंगे उनके साथ और फिर उनको कुछ प्रसाद शाद खिला देंगे और बोलेंगे हाँ हमारे घर पे आए, इससे मजाक करते हैं वो तो साधु, वो जो स्कोन की रोटी हमारे घर पे, इतना मजा आया, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया उनके साथ। लेकिन वास्तव में भक्तों हमें सीरियस होना पड़ेगा। साधु संघ का मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ टाइम पास करें। साधु संघ का प्रथम लाभ होता है कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त करें। आपने कितना साधु संघ किया है वो किससे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। अब जिस घर में साधु रहता है उसमें मच्छर भी रहते हैं, मक्खी भी रहते हैं, हो सकता है चूहे भी हो, लेकिन अगर वो ये दावा करने लगे भगवान के सामने कि हमने साधु संग किया है, हमें भी वो सब सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए जो नारद मुनि को प्राप्त हुई हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि नारद मुनि ने क्या किया था, नारद मुनि बताते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायतम अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा ताशत ुपादम विश्वत प्रिय श्रवस्यंगमामा। वास्तव में भक्तो यही साधु संघ का मेन मकसद है, यानी कि साधु संघ का अगर कोई लाभ है तो यही है। जैसे हमने पढ़ा 5.26 में नारद मुनि ने बताया था, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, कि मैंने उनके साथ साधुओं का संग करा और कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहणेना श्रवणम मनोहरा, मुझे उन भगवान की कथाओं को उन साधुओं के मुख से सुनने में बहुत आनंद आता था, बहुत मुझे अच्छा लगता था। ऐसा लगता था ये मैं कि मैं प्रकारे मैं जाऊं और उनसे भगवान के विषय में सुनूं, और सुनूं खाली श्रवण ही नहीं, बाकी क्या बताया, ताशत्थयो मेनु पदम विश्ववता, विश्व का मतलब मैंने बहुत ध्यान से सुना उनकी जो बातें मुझे बता रहे थे और बहुत श्रद्धा के साथ सुना। मैंने एक प्रतीक प्रतीक शब्द पर मेरी पूरी श्रद्धा थी और पूरा आनंद, पूरी श्रद्धा के साथ मैं पूरा ध्यान से उनकी बात को सुनता था। और यही लाभ होता है वास्तव में भक्तों, अगर साधुओं का संग कभी प्राप्त हो तो उसका मतलब ये नहीं है। आज क्या होता है, हम साधुओं के साथ संग करते हैं फिर हम अपने भौतिक झगड़े भौतिक प्रॉब्लम्स उनके सामने बताते रहते हैं कि मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे करती है, या कुछ उल्टी सीधी जो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। साधु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भौतिक दर्द को दूर करे, साधु का मतलब ये है कि तुम्हें वास्तविकता तुम्हें प्रदान करे, साधु का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि आइंदा कभी भी तुम्हें इस दुखों वाले संसार में, ये दुख आएंगे क्यों नहीं, ये संसार का नियम है, दुख आएंगे। ऐसा नहीं कि तुमने साधु का संग किया तुम्हें दुखों से बच जाओगे, ऐसा है कि वापस से दुख वाले संसार में आने से बच जाओगे। तो प्रथम लाभ क्या होगा साधु का, ज्ञान। क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बताते हैं 4.39 में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने श्रद्धा से साधुओं के वचन को श्रवण किया। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, जब तक आप साधुओं के शब्दों को श्रवण नहीं करते हो, तब तक भले आप कितने ही साधुओं के साथ कितने ही सालों तक रहते हो, लेकिन यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है और उनको श्रवण नहीं करते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ साधुओं को का संग करते हुए भी, तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ। यहाँ पर तो नारद मुनि कहते हैं इमं स्वनिगमम, निगमम का मतलब है वेद, याद है हमने 1.1.3 में पढ़ा था, निगम कल्पतरुर्कलितं फलम्। ये वाला निगम का मतलब होता है कि वैदिक साहित्य, और ये श्रीमद् भागवतम क्या है, गलितम फलम, उस वैदिक साहित्य का जो वृक्ष है, कल्पतरु वृक्ष है, उसका गलितम फलम ये श्रीमद् भागवतम। तो वो आज नारद मुनि बता रहे हैं कि इस प्रकार जब मैंने साधु संग किया, उनके उनसे श्रद्धा से सुना और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है? ऐसा थोड़े है कि आपने बोल दिया कि भाई मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और हम मान लें। वास्तव में हमें दिखना चाहिए ना कि आपको कितना शास्त्र, वो कहते हैं स्वनिगम, मुझे वेदों का संपूर्ण निचोड़ पता चल गया, यानी कि श्रीमद् भागवतम मुझे पता चल गया। तो यदि हम किसी साधु का संग करते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए क्या लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में, क्या भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को, क्यों कह रहे हैं ऐसा। श्रीमद् भागवतम के श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता के विषय में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक, ये हमें पता होने चाहिए। अगर हम साधु संग कर रहे हैं और ये सब नहीं आ रहा है, हमें अपने शास्त्र को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे साधुओं का संग करने का, है ना? यदि अपने केवल अपने शास्त्र को ही नहीं समझ सकेंगे, तो नारद मुनि कहते हैं मुझे तो सारे वेद पता चल गए, सारे वेदों की सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने, और हम कह रहे हैं हम इतने सालों से साधुओं का संग कर रहे हैं, अभी तक श्रीमद् भगवत गीता तक नहीं सीखी है हमने, क्या संग किया फिर हमने? तो आगे कहते अरे ज्ञान का पता कैसे चलेगा कि आपको एक तो शास्त्र के विषय में पता होगा, शास्त्र इस शास्त्र में ये यहाँ पर लिखा हो, जितना जितना आप साधुओं का संग करते हो उतना उतना आपके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। और दूसरा कैसे पता चलेगा, भगवान बताते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन खाली कोरी नॉलेज प्राप्त करना भी काफी नहीं है कि आपको पता चलेगा कि भगवान भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे तोते की तरह श्लोक रटे हुए होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं खाली ज्ञान काफी नहीं है, कोरा ज्ञान काफी नहीं है जब तक कि उसके साथ आपका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो। क्या होना चाहिए? तत्पर संयत इंद्रिय, आप वाकई में ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको, तो फिर आप वो कार्य करोगे इंद्रियों को वश में करने का। अगर वही कार्य आप कर रहे हो तो आपका ज्ञान जो है वो दो तरह से दिखता है, कि कितना आपको शास्त्र के विषय में पता है, कितना भगवद गीता और भागवतम के विषय में पता है, और दूसरा कितना आप अपनी इंद्रियों को संयमित करते हो, कितना अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हो। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां उसी तरह विचरण कर रही हैं जिस तरह से अज्ञानी व्यक्तियों की, वही आहार निद्रा बाई मैथुन, जिधर दिल कर रहा है उधर खा रहे हैं, जो दिल कर रहा है वो पहन रहे हैं, जो दिल कर रहा है उसको देख रहे हैं, जो दिल कर रहा है उसको बोल रहे हैं, जो मर्जी आए जो सुनना चाह रहे हैं वो सुन रहे हैं, चाहे किसी की निंदा हो रही है, चाहे किसी की बुराई हो रही है, या उनके साथ हम भी हाँ में हाँ मिलाकर और भी मसाले लगाकर उसको बोल रहे हैं। मतलब हम अगर इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहे हैं, पता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रजोगुणी और तमोगुणी आहार नहीं करना है, फिर भी केवल सात्विक आहार करना है, जो भगवान को प्रसाद अर्पण करके वही खाना है, फिर भी अगर यही हम लोग है ना रास्ते में ठेलों के ऊपर खड़े होकर खा रहे हैं, या फिर तो फिर जब तक इंद्रियों को संयमित कर, अभी चार नियम पालन ही नहीं हो रहे हैं। चार नियम पालन में पता है अवैध संग सब नहीं करना है, ठीक है? अब उसमें क्या है, अवैध संग त्याग करने के लिए क्या है कि अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त जितने अगर पुरुष हैं तो जितनी भी लेडीज होंगी, चाहे वो किसी भी एज की हो, हमारा सिद्धांत है, हमें ये सिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने कि अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त जितनी भी पुरुष की जितनी भी लेडीजों को क्या लगेंगी, उसको माता लगनी चाहिए। हर एक लेडी, हर एक फीमेल उसको माता लगनी चाहिए। इसका मतलब है हर एक लेडी को अपने पति के अतिरिक्त जितने भी पुरुष हैं वो क्या लगने चाहिए, अपने पुत्र लगने चाहिए। ये खाली ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल दिया माता जी या प्रभु, हमें दिल से ये बात को स्वीकार करना है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माता के समान है, मुझे इसका आदर करना है। तो जितना अगर आप कोई ज्ञानी भी है, कोई कोई हम लोग देखते हैं बहुत सारे ज्ञानी होते हैं लेकिन उनकी वासना तक समाप्त नहीं हुई होती, तो यदि इंद्रियां संयमित नहीं है तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस तरह ज्ञान का अनुभव इन दो बातों से होता है कि आपको कितना शास्त्र पता है और कितना आप अपनी इंद्रियों को संयमित करते हो, उसी तरह से श्रद्धा का अनुभव भी दो बातों से होता है। एक तो आप कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण है आपका, कितना प्रेम करते हो कृष्ण से, कितना कृष्ण के लिए कार्य करना चाहते हो, है ना, कि मैं ये भी करना चाहता हूँ कृष्ण के लिए, कितनी सेवा करना चाहते हो, कितना कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण है, और दूसरी बात कितना त्याग कर सकते हो, कितना कार्य कर सकते हो, कितना अपनी विशेष को त्याग कर सकते हो। सबसे मीठी चीज हमें अपनी क्या लगती है, नींद। तो उतना भी हम अगर अपने भगवान के लिए, अपने कृष्ण के लिए त्याग नहीं कर सकते तो समझो श्रद्धा नाम की खाली, प्रेम खाली नाम का है, पता है कृष्ण जागा हुआ है और कृष्ण मेरा वेट कर रहा है मंगला आरती पर, और मैं मजे से पलंग पे सो रहा हूँ, तो हमें शर्म आनी चाहिए इस पर। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे, मैं अपनी भी बात करूँ, अक्सर ऐसा होता है मंगला आरती के टाइम पर समय हो जाता है, फिर भी आंख नहीं खुलती, ऐसा लगता है कि नहीं और भी थोड़ा सोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि हम अपनी अपनी श्रद्धा को, जितना जितना हमारे अंदर श्रद्धा होगी, देखो भगवान ने साफ साफ कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा दिखनी चाहिए, खाली बोलना काफी नहीं, मुझे श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान है। आपकी श्रद्धा दो चीजों से दिखती है कि कितना आप कृष्ण के लिए कार्य करते हो, कितना प्रेम करते हो, कितनी आकर्षण है आपकी, और कितना आप उसके लिए त्याग कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया कि जब मुझे साधुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी, और इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवीत्या मद अनुष्ठितम्, जब मैंने साधुओं का संग किया, उनसे श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद, श्रद्धा से श्रवण करने के बाद मैंने भगवान के मंत्र रूपी नाम को उच्चारण किया, मंत्र को जप किया भगवान के, तो उससे क्या हुआ कि अदान में का मतलब होता है मुझे वर दिया। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं, मैं वर देता हूँ उसको जो कंटिन्यूअस मेरे नाम का जप करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां, जो प्रेम से प्रीतिपूर्वक मेरे नाम का जप करते हैं, मैं उसे वरदान देता हूँ। तो वैसे क्या होता है, वरदान पूछा जाता है ना, कोई भी देवी देवता मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं पूछता ही नहीं हूँ, मुझे पता है उसकी क्या जरूरत है, मेरे भक्त को भगवान कहते हैं योगक्षेम महाम्यम, मैं अनन्या चिंतयंतो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगम योगक्षेम महाम्यम, जो कंटिन्यूस मेरे नाम का भजन करते हैं मैं अपनी मर्जी से देता हूँ उनको, उनकी मर्जी क्यों, क्या देता हूँ, जो उनके पास जिस चीज की कमी है उस कमी को पूरा करता हूँ, और जो चीज उनके पास है उनकी सुरक्षा करता हूँ, कोई चीज की कमी नहीं रहता। और यहाँ पर भगवान ने कहा, अभी 9.22 में भगवान ने कहा उसकी हर कमी को पूरा करता हूँ, और फिर 10.10 में भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांतिते, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करें। यानी कि भगवान जानते हैं कि जीव की कमी क्या है, भगवत कमी है। अगर हमारे पास कोई चीज की कमी है ना, तो वो यही है कि हम अपने भगवान से दूर है। तो भगवान ने कहा मैं उन्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ जिसे वो मुझे प्राप्त कर देते हैं। कितनी अनुकंपा है कृष्ण की। और भी भगवान को पता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए उनको, उनके जो अज्ञान है ना, वो ये अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर से रिलेटेड समस्त वस्तुओं को अपना समझ रहे हैं, ये अज्ञान को दूर करना है और ज्ञान प्राप्त कराना है उनको कि आप ये शरीर नहीं हो, आप मेरे अंश हो। तो भगवान बताते हैं 10.11 में, तेषाम् एव अनुकम्पातम् अहम् अज्ञानजं तम नाशयाम् आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासता। फिर उनके अज्ञानजनक अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान के प्रकाशमय प्रज्वलित दीपक से उनके हृदय को प्रज्वलित कर देता हूँ, उनके हृदय में जो अंधकार बढ़ा हुआ है उसको खत्म कर देता हूँ। अब अंधकार के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान दिखते नहीं है, फिर जब ज्ञान का दीपक रोशन हो जाता है ना, तो याद आ जाता है कि अरे दिख जाता है फिर सब कुछ कि ये तो भगवान बैठा हुआ मेरे हृदय के अंदर था, मुझे पता ही नहीं था, क्यों पता नहीं था, क्योंकि अंधकार था। और जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, पवित्र नाम का जप करते हैं, तो भगवान से बहुत इजी, भगवान दूर थोड़े, भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान दूर नहीं है, ईश्वर आपके हृदय के अंदर बैठा। अब प्रॉब्लम क्या है, अज्ञान के कारण हृदय के अंदर इतना अंधकार है कि दिखता नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं, जब हम पवित्र नाम का जप करते हैं तो भगवान कहते हैं तेषामेवानो कंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयाम यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। अंदर जाकर हृदय के अंदर प्रज्वलित कर देता हूँ, रोशनी कर देता हूँ, फिर जीव को अपने हृदय के अंदर ही भगवान दिखने लगता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि फिर मुझे आदान में मुझे भगवान ने वरदान दिया, क्या दिया, ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन, ये तीन चीजें, स्वस्मिन भावम, ये तीन चीजें मुझे भगवान ने दी। पहले क्या दिया, ज्ञानम, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्य ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, कृष्ण क्या है, कृष्ण के कौन कौन से फेस हैं, कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, ये सब ये दिव्य ज्ञान है। और भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से नारद मुनि को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम का मतलब होता है मिस्टिक पावर्स जो होते हैं ना, जैसे योग सिद्धियां, भगवान के केवल नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि नाम जप करने से कुछ हमें मिलता नहीं है। पता नहीं कोई कोई लोग ऐसा लगता है ना कि बाकी योग सिद्धियों से, मतलब योग साधना से कितना सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन नारद मुनि को देखिए, नारद मुनि एक सेकंड में कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम में भी पहुंच जाते हैं, और कभी द्वारिका में पहुंच जाते हैं, कभी मथुरा, कभी मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं, कभी कहां पर पहुंच जाते हैं, सारा कुछ पता होता है उनको। हर एक जगह पे बैठकर सारे लोगों की खबर रखते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि फिर मुझे पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, उसके बाद स्वस्मिन भावम यानी भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त हुआ। और ये सब किसने लिए, चकेशवा, ये सारे वरदान मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दिए, क्योंकि मैं साधुओं का संग किया था, उनसे श्रवण किया था, भगवान के नाम का कीर्तन किया था, तो भगवान मुझ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहते ना कि बदामी बुद्धि योग, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ऐश्वर्य, फिर स्वस्मिन भावम प्रगाढ़ प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान के साथ संसर्ग करना और भगवान का नाम का जप करना वो अभिन्न है, एक ही बात है। क्या भगवान के नाम का जप करते हो या भगवान से डायरेक्ट साक्षात्कार करते हो, अभिन्नत्व नाम अनाम, भगवान में और भगवान के नाम में कोई रंच मात्र भी फर्क नहीं है। और इस संसार में भगवान तक पहुँचने की ये सबसे पूर्ण विधि है, सबसे ज्यादा पूर्ण है और सबसे ज्यादा सहज भी है। लेकिन इसमें एक चीज की हमें ध्यान रखना होगा, क्या, कि नाम के अंदर नाम अपराध ना हो। कि जब हम नाम, भगवान नाम जप करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अपराध होते हैं, यदि हम उनका नाम जप करने के साथ साथ वो अपराध भी करते ना, तो नाम जप करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये सारी चीजें, अब आज हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है भगवान के साथ, हम कहते हैं हम कब से नाम तो जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका मेन कारण क्या है कि 10 नाम अपराध हो रहे हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि भक्तों की निंदा हो रही है। कोई भी, अभी हमें वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है जो व्यास आसन पर बैठा हुआ उसकी निंदा नहीं कर, कोई भी वैष्णव हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि एक बारी जने कृष्ण नाम लियो, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया ना मेरी नजर में तो वो वैष्णव है। अब इसका मतलब है किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और गुरु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और भगवान नाम को कर्म कांड के तरह नहीं समझना चाहिए, भगवान नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए, और अश्रद्धालु लोगों को भगवान नाम के विषय में बताना भी नहीं चाहिए। और बारम्बार जब हम भगवान के नाम को नाम की महिमा को श्रवण करते तो भौतिक वस्तुओं की ओर हमारी आसक्ति भी समाप्त हो जानी चाहिए। इस तरह से क्या होगा, नाम प्रभु हम पर प्रसन्न होंगे। जब नाम प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं ना इस संसार में, तो समझो भगवान हम पे प्रसन्न हो गए। तो हमें नाम जप करने के टाइम पर सावधान रहना चाहिए कि हम 10 नाम अपराध ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जप करना छोड़ दें। भगवान से प्रार्थना करें, अपनी तरफ से प्रयास करें। गुरु गौरंग और भगवान श्री कृष्ण, शरद गोस्वामी सब बहुत कृपालु हैं, हमारे प्रयासों को देखकर कृपा करते हैं। जितनी हमारे अंदर श्रद्धा होती है, हम जितना सिंसियर होंगे उतनी ही कृपा है कि हमारे लिए। तो हमें सिंसियरिटी के साथ नाम जप करना है और कोशिश करनी है कि हम अपराध ना करें। तो उससे क्या होगा, बहुत ही तीव्रता से, तीव्र गति से हम भगवान को, भगवान की प्रेम और भक्ति को प्राप्त करेंगे। और इस तरह से जब हम नाम अपराध से बचकर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो फिर हम भौतिक संसार में होते हुए दिव्य स्थिति पर पहुंचते, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है। तो जब हम दिव्य नाम को जप करते हैं ना, तो दिव्य स्टेज पर आ जाते हैं। और इस तरह से हम दिव्य संसार में, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा शाश्वत भगवान के साथ कौन सा, हमारी सेवा क्या है, हर एक चीज धीरे धीरे धीरे, हर जो कुछ ना छुपा हुआ है वो सारा ज्ञान खुलता जाएगा और हमें हमारी वास्तविकता पता चलेगी। हम ये शरीर नहीं है, हम ये संसार में जो हमारा नाम है वो भी हम नहीं है, जो ये संबंध है वो भी हमारे नहीं है। लेकिन हमें अभी पता नहीं है ना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जिस तरह से हम अगर नाम अपराध से बचकर भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे ना, तो दिव्यता समझ में आएगी हमें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और जो अपने गुरु में और भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि यहाँ पर हमें क्रमशः आगे बढ़ने के विषय में बताया, जैसे नारद मुनि ने क्या बताया है कि आदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम, कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद ऐश्वर्य, उसके बाद भाव। पहले ज्ञान प्राप्त होता है यानी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान के विषय में ज्ञान पता चलता है। उसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है ये मिस्टिक पावर्स, जो योग सिद्धियां है ना वो उन भक्त को मिलती हैं। उसके बाद जैसे 8 योग सिद्धियां जैसे हम पढ़ते थे, यम नियम आसन प्राणायाम और अणिमा लघिमा, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना, और पानी के ऊपर चलना, और हल्का पंख से, मतलब जैसे पंख होता है ना उड़ता है, बहुत एकदम हल्का हो जाना, बहुत भारी हो जाना। तो ये 8 सिद्धियों की संख्या है वो प्राप्त होती है। और उनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान के पार्षद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो उसे प्राप्त हो जाता है, भगवान की सेवा उसे प्राप्त हो गई। वास्तव में भक्तों, हमने जब से जीव गिरा है संसार में, तटस्थ शक्ति और जब से गिरा है, तब से माया की सेवा कर करके जीव बेजार हो गया है। लेकिन अब सेवा से उसको छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व है भगवान की सेवा करना। तो जीव के जीवन का सफल क्षण वो होता है जब उसे वापस से भगवान की सेवा, भगवान का पार्षद बनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, तो बाकी जो से ये सारी सिद्धियां लिया उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन शुद्ध भक्त को क्या इंटरेस्ट होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान का सानिध्य, भगवान के प्रेम में ही रुचि होती है। तो नारद जी ये सब वर्णन कर रहे हैं, उनका निजी अनुभव है, वो उसके विषय में बता रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मनुष्य ये सारी सिद्धि वस्तुएं, ये सारी सुविधाएं जो नारद मुनि को प्राप्त हुई है, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं,
जब हम भगवान के पवित्र नाम का भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त किए ना, उन्होंने भी तो साधुओं का संग किया और भगवान के पवित्र नाम का जप किया, तो नारद मुनि को ये सारी सिद्धियां भगवान का आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुआ। तो इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आसन कोई भी हो। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, नियमित सिमरणे न काल, कोई नियम नहीं है, न स्मरण करने का और न ही जाति पाति किसी का भी नियम नहीं है, सिर्फ एक शर्त है और वो क्या है, बशर्त ये कि उसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो परंपरा प्रदत्त से चला आ रहा है। यानी कि नाम आप अपने अपने ओन से नहीं, जब आप किसी परंपरागत गुरु से दीक्षा लेते हैं, जब गुरु महाराज का सानिध्य आपको प्राप्त होता है, गुरु एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, गुरु के साथ पूरी परंपरा जुड़ी होती है। जब हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है हमारे साथ, तो श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद उनके साथ, षड गोस्वामी का आशीर्वाद श्रील प्रभुपाद जी के साथ, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद षड गोस्वामी के साथ, नित्यानंद प्रभु, हर एक श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, सबका एक पूरी परंपरा का आशीर्वाद हमें गुरु महाराज के सानिध्य से मिलता है। और तब हमारा नाम इतना दृढ़ होता है, इतना सिद्ध होता है कि ऐसा होता है कि जो भक्ति का बीज जो है वो फूटता है ना, जब जब उसमें से कोमल निकलती है, गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ होता है, तो वो भले इतना छोटा सा नन्ना सा पौधा होता है, लेकिन जब उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ये इतना आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूस। जब गुरु का सानिध्य होगा ना, तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी, फिर क्या होगा, ऊपर जाते 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 सारे आसमानों को चीर कर गौलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो जो भक्ति लता के बीज से जो पुष्प खिला होता है ना, भगवान के चरणों तक पहुंचता है, वहीं जाकर वो विश्राम करता है। तब तक उसे आराम नहीं आता, क्योंकि गुरु महाराज तब तक अपने शिष्य का साथ नहीं देते जब तक कि उसे भगवान तक ना पहुंचा दे। तो हमें इसी तरह से गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। एक न एक दिन अपनी श्रद्धा को विकसित करेंगे, भगवान के साथ प्रेम और आकर्षण बढ़ाएंगे और भगवान के लिए उन वस्तुओं का त्याग करेंगे जो कि हमारे और भक्ति के बीच में बहुत बड़ी बाधा है, और ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियों को संयमित करेंगे, शुद्ध वैष्णवों का संग करेंगे और श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, एक नहीं दिन ऐसा आएगा कि हमें भी भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और जीवन की परम सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपना जप सवेरे कंप्लीट कर लूं ताकि आपको जल्दी से श्लोक सेंड कर सकूं। हरे कृष्णा।